पिंकेश कुमार की आवाज़ में राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के सिद्धांत अध्याय अधिकार राइट्स थॉमस जेफरसन का कथन है। स्वभावतः सब मनुष्य समान रूप से उन्मुक्त तथा स्वाधीन है और उनके कुछ जन्मजात अधिकार हैं जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने जीवन अथवा अपने संतानों से पृथक नहीं कर सकते, यथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उपभोग, संपत्ति के अर्जन और सुखी जीवन के जीने के साधन का अधिकार। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता हैं, जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य। बस तो अधिकार के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं और लास्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार से अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। अधिकार का अर्थ और परिभाषा। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाने वाले इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकार की निम्नलिखित शब्दों में परिभाषाएं की गई हैं। लॉस्की, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। वाइल्ड के अनुसार अधिकार कुछ विशेष कार्यकर्मियों की स्वतंत्रता की उचित मांग है। हॉलैंड के अनुसार व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को स्वयं अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहते हैं। बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिकों के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। अधिकार के आवश्यक लक्षण। लॉस्की, वाइल्ड और श्रीनिवास शास्त्री के अधिकार की जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं और अधिकार की सामान्य धारणा के आधार पर इनके निम्न लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला, सामाजिक स्वरूप। अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति अभाव आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियां हैं। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है और इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकताएं तथा उपभोग समाज में ही संभव है। शून्य में व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। रॉबिन्सन क्रूसो जैसे व्यक्ति को निर्जन टापू में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनकी सिद्धि समाज में ही संभव है। इस दृष्टि से भी अधिकार समाजगत ही होते हैं। दूसरा, कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वही स्वतंत्रताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक या सहायक हों। व्यक्ति को कभी भी वह अधिकार नहीं दिए जा सकते जो व्यक्ति के विकास में बाधक हो। इसी कारण मद्यपान, जुआ या आत्महत्या का अधिकार नहीं होता है। तीसरा, लोकहित में प्रयोग। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामाजिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं, अतः आवश्यक है कि इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है जिससे व्यक्ति या संपूर्ण समाज के हित में बाधा पहुंचती है, व्यक्ति के अधिकार को तब सीमित किया जा सकता है। चौथा, राज्य का संरक्षण। अधिकार का एक आवश्यक लक्षण है कि उसका दायित्व, उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है। इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। उदाहरणार्थ, व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, यह बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है। लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे उस समय तक परिभाषिक अर्थ में इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। पांचवा, सार्वभौमिकता या व्यापकता। अधिकार का एक अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किया जाए। इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। अधिकार के उपयुक्त लक्षणों के आधार पर समान अर्थों में अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक हुए सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। अधिकारों का वर्गीकरण। साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते हैं, पहला नैतिक अधिकार, दूसरा कानूनी अधिकार। पहला, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य के कानून से इसका कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स। ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिसका उल्लंघन दंडनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इनको लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लेखक ने इनको परिभाषित करते हुए कहा है, कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं। कानूनी अधिकार को दो भेद हैं, पहला सामाजिक या नागरिक अधिकार, सोशल और सिविल राइट्स। प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्न है। ए, जीवन का अधिकार। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सर्वाधिक मौलिक व आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति के अन्य अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन के अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य व्यक्ति को इसका व्यवस्था करेगा कि दूसरा व्यक्ति व्यक्ति के जीवन का अंत न कर सके। जीवन के अधिकार के अंतर्गत आत्मरक्षा का अधिकार निहित है तथा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन पर कभी आघात किया जा सकता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और आत्मरक्षा के निमित्त की गई कार्रवाई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति समाज का आवश्यक अंग होता है और समाज व्यक्ति का जीवन स्वयं के साथ साथ समाज की भी संपत्ति होती है। इसे जीवन के अधिकार में यह बात भी सम्मिलित है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की अंत नहीं कर सकता, अतः आत्महत्या एक दंडनीय अपराध है। थॉमस एक्विनन के शब्दों में, आत्महत्या स्वयं अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है। बी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्ति होने के नाते समान सम्मान और महत्व प्राप्त होता और जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति में भेद के बिना सभी व्यक्तियों को जीवन के विकास हेतु सभी समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातंत्र की आत्मा है जिसके निम्न भेद हैं। क, राजनीतिक समानता का अधिकार, जिसका तात्पर्य व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेना का आवश्यकता हो, इसकी प्राप्ति प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही संभव है। इसमें यह बात भी शामिल है कि न्याय और कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हों। ख, सामाजिक समानता का अधिकार, समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। डॉक्टर बेनी प्रसाद, सामाजिक समानता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के सुख का समान महत्व है तथा किसी को भी अन्य व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। सामाजिक समानता की स्थापना हेतु भारतीय संविधान में 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ग, आर्थिक समानता का अधिकार। वर्तमान समय में आर्थिक समानता का तात्पर्य लिया जाता है कि मानव के आर्थिक स्तर में गंभीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए और संपत्ति और उत्पादन के साधनों का न्यायसंगत वितरण होना चाहिए। टोनी के शब्दों में, आर्थिक समानता का अर्थ एक ऐसी विषमता के अभाव से है जिसका उपभोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके। लॉस्की का तात्पर्य उद्योग में प्रजातंत्र रहते हैं। तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है क्योंकि इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज का विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता का तात्पर्य उच्छृंखलता या नियंत्रणहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु उचित अवसरों की प्राप्ति है। लॉस्की, इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपना जीवन यापन कर सके। इसके निम्न भेद हैं। क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति अपने सामान्य जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सके। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं और इसे सर्वोत्तम सद्गुण मानते हैं। स्वतंत्रता के इस रूप का प्रतिपादन करते हुए मिल कहते हैं, व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं शरीर और मस्तिष्क आत्मा या पर व्यक्ति संप्रभु होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत यह बात भी सम्मिलित है कि कानून का उल्लंघन किए बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायालय द्वारा अभियोग की पुष्टि के बिना उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। ख, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विचार स्वतंत्रता मानसिक और नैतिक उन्नति की सर्वोच्च सत्य है। मानव विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति का आत्म विकास एवं समाज की संपूर्ण उन्नति विचारों के आदान प्रदान पर ही निर्भर करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार विचार रखने, भाषण, लेख आदि के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सम्मति देने, आलोचना करने, लिखने एवं प्रशासन की स्वतंत्रता भी शामिल है। सुक्रात, लेस्लास्की आदि सभी विद्वानों ने विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार किया है। मिल्टन कहता है, मुझे अंतर्मत के अनुसार जानने की, बोलने की और तर्क करने की स्वतंत्रता अन्य स्वतंत्रताओं से अधिक प्रिय है। मिल लिखते हैं, यदि एक को छोड़कर समस्त मानव समुदाय एकमत हो तो मानव समुदाय का उस व्यक्ति को चुप कराना उससे अधिक उचित नहीं है जिससे उस व्यक्ति का, यदि उसके पास शक्ति हो, मानव समुदाय को चुप कराना। गौ, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म नहीं लादा जा सकता है। धर्म का संबंध व्यक्ति के अंतर्ग्रहण से होता है और इस कारण इस संबंध में किसी प्रकार का बाहरी दबाव नितांत अनुचित है। किंतु धार्मिकता की आड़ में अनाचार अत्याचार या धार्मिक असहिष्णुता की आज्ञा नहीं दी जा सकती। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में रूस ने ठीक ही कहा है, सब धर्मों को जो दूसरों को धर्मों को सहन करते हैं सहन किया जाना चाहिए और तब तक उसके मत नागरिकता के कर्तव्यों का विरोध नहीं करते। घ, समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार। संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मंत्र है, इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके, लेकिन इस प्रकार के किसी भी संगठन को समाज विरोधी या अनैतिक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। चौ, नैतिक स्वतंत्रता। एक व्यक्ति के पास उपयुक्त सभी स्वतंत्रता होने पर भी यदि वह नैतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो उसकी स्थिति दयनीय होती है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने विवेक और अंतरात्मा के अनुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। नैतिक स्वतंत्रता नींव के उस पत्थर के समान है जिस पर जीवन का संपूर्ण भवन आधारित होता है, और नैतिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता का कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता है। चौथा, संपत्ति का अधिकार। मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति के अधिकार का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है क्योंकि हम विचार मानव की उन्नति का मूल है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर अधिकार खर्च कर सकता है, अर्जित करके रख सकता है। धन जमित या जमीन या जायदाद के रूप में व्यक्ति रक्षित संपत्ति को बिना मुआवजा दिए उसे छीना नहीं जा सकता है। वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को अनियंत्रित रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि संपत्ति का अधिकार जहां एक ओर दया, दान, उदारता, स्नेह, कार्यक्षमता आदि मानवीय गुणों की ओर प्रेरित करता है, वहीं यह विषमता, भेदभाव, वैमनस और शोषण के दुर्गुणों का भी कारण बन जाता है। अतः जन कल्याण की दृष्टि से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इस संबंध में लॉस की, संपत्ति का अधिकार तभी तक है जब तक कि मेरी सेवा की दृष्टि से उसका कुछ महत्व है। उस वस्तु पर मेरा स्वामित्व नहीं हो सकता जिसका उत्पादन प्रत्यक्षता किसी अन्य के श्रम से हुआ हो। मेरा किसी वस्तु का स्वामित्व न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है यदि उसके परिणाम स्वरूप मुझे अन्य व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक अन्य स्थान पर लॉस्की लिखते हैं, धर्मान तथा निर्धन में विभाजित समाज रेत की नींव पर टिका होता है। संपत्ति अकर्मण्यता को घोषित करती है। संपत्ति भी लोग रचनात्मक कार्यों में अपना समय नहीं लगाते हैं। इसके अतिरिक्त संपत्ति राजनीति में अपमानछय रूप से धन का रूप पैदा करती है जो कि अंत में समाज प्रशासन को दूषित करता है। यह एक तथ्य है कि संपत्ति का अधिकार सामाजिक आवश्यकताओं से मर्यादित होता है। पांचवा, रोजगार का अधिकार। व्यक्ति को स्वयं और अपने परिवार के भरण पोषण, आवास एवं शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है और यह आर्थिक शक्ति किसी न किसी प्रकार का काम के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। अतः वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और काम के बदले उचित पारिश्रमिक हो। लॉस की, अपना सर्वोत्तम रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम के अभाव में उस समय तक प्रबंध किया जाना चाहिए जब तक किसी व्यवस्था में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो। एक व्यक्ति को केवल काम का अधिकार नहीं केवल उसे उसके बदले उपयुक्त मजदूर का भी अधिकार होना चाहिए। नैतिक रूप से वर्तमान राज्य में सभी राज्य इस अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, किंतु भारत जैसे अनेक राज्यों में आर्थिक साधनों के अभाव के कारण राज्य कानून रूप से अभी तक इसको नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। छठा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मानव की राजनीतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक खुराक है और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। अर्थात वर्तमान समय में यह सम्मान है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, शासन को धनवान एवं निर्धन दोनों ही वर्गों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालय की स्थापना की जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए। सातवां, परिवार का अधिकार। राज्य के समान ही परिवार भी मानव जीवन का अनिवार्य संस्था रही है और मानव जाति के विकास में परिवार का योग किसी भी दूसरी संस्था से कम नहीं है। केवल कम तुष्टि और मानव जाति को बनाए रखना ही नहीं बल्कि नागरिक गुणों के विकास हेतु भी परिवार का अस्तित्व आवश्यक है। अतः व्यक्ति के विवाह कर परिवार के निर्माण करने और संतान के पालन पोषण का अधिकार होना चाहिए और राज्य को इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किंतु समाज के हित में पागल कोठी और अन्य घातक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अब अधिकारों का वर्गीकरण का दूसरा भाग, राजनीतिक अधिकार। कानूनी वर्गीकरण का दूसरा भाग, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। राजनीतिक अधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्तियों के जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन में भाग लेते हैं। साधारणतः प्रजातांत्रिक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्न राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। पहला, मत देने का अधिकार। वर्तमान समय में विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवस्था संभव नहीं रही है और इसके लिए प्रतिनिधित्मक प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है जिनके द्वारा शासन कार्य चलाया जाता है। इस प्रकार मताधिकार के माध्यम से ही देश के शासन में भाग लेती है और मतदान को प्रजातंत्र की आधारशिला कहा जाता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मताधिकार के अत्यधिक व्यापक बनाने की है और इससे अधिकांश देशों में व्यस्त मताधिकार को अपना लिया गया है। दूसरा निर्वाचित होने का अधिकार। प्रजातंत्र में शासक और शासित का कोई भेद नहीं होता और योग्यता संबंधी कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है। इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। तीसरा, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। चौथा, आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। लोकतंत्र शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाए, अतः नागरिकों को अपनी शिकायत दूर करने या शासकों को आवश्यक सम्मति प्रदान करने के लिए व्यक्ति या सामूहिक रूप से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अंतर्गत ही शासन की आलोचना का अधिकार भी सम्मिलित किया गया है। साधारण रूप से इस प्रकार के अधिकार देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं और देश में बसे हुए विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है। राज के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार, राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। साधारणतः यह प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है अथवा नहीं। यदि व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो तो किस सीमा तक और किन परिस्थितियों में इसका उपभोग किया जा सकता है। राज्य के प्रति व्यक्ति और राज्य के आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य होता है और इसलिए व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का कानूनी अधिकार तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि शासन के अस्तित्व का उद्देश्य जन इच्छा को कार्य रूप में परिणत करते हुए सामान्य कल्याण होता है, और यदि शासन सामान्य कल्याण की साधना में असफल हो जाता है या शासन जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो उस शासन का अस्तित्व में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार शेष नहीं रह जाता है। नागरिकों को इस प्रकार की सरकार को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त होता है, और यदि संवैधानिक मार्गों से इच्छित परिवर्तन न किया जा सके तो व्यक्तियों को अधिकार है कि वह शक्ति के आधार पर वांछित परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। लास्की ने कहा है, नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जल कल्याण में प्रयोग है। ऐसी परिस्थितियों में यदि व्यक्ति को इस बात पर विश्वास हो जाए कि विद्यमान शासन व्यवस्था सर्व सामान्य के हित में कार्य नहीं कर सकती तो राज्य के प्रति विद्रोह व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार ही नहीं वरन एक नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा है, व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है, अतः अंतरात्मा की पुकार कर सरकार का विरोध किया जा सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्रोह का अधिकार राज्य की अंतिम औषधि है, न कि प्रतिदिन का भोजन। इसलिए दूसरे सभी संबंधित पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद ही इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में टी.एच. ग्रीन ने अपनी पुस्तक राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस के में जो विचार व्यक्त किए हैं वे पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं। ग्रीन, महात्मा गांधी आदि विचारकों के द्वारा किए गए विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि निम्नलिखित बातों के पूरा होने पर ही विद्रोह को राजनीतिक का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ए, स्थिति को सुधारने और वांछित परिवर्तन लाने के लिए विद्रोह के पूर्व सभी प्रकार के संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए और संवैधानिक साधनों की असफलता के बाद विद्रोह के संबंध में सोचा जाना चाहिए। बी, विद्रोह की भावना व्यक्तिगत न होने का सामाजिक होनी चाहिए। सरकार द्वारा किए जाने वाले अन्याय साधारण प्रकृति के न होकर गंभीर प्रकृति के होना चाहिए और विद्रोह करने वाली जनता विद्रोह के उद्देश्य से पूर्व परिचित होनी चाहिए। सी, विद्रोह किसी वर्ग विशेष के हित की प्रेरणा से नहीं वरन सामाजिक हित की प्रेरणा से होना चाहिए। डी, विद्रोह करने वाले व्यक्ति चैतन्यवान संयमी और विवेकशील होने चाहिए। उनका विवेक पक्ष भावना पक्ष से प्रबल होना चाहिए और उन्हें विद्रोह के विभिन्न भिन्न रूपों का ज्ञान होना चाहिए। ई, अनेक बार विद्रोह के परिणाम विद्रोह के पूर्व की स्थिति से भयंकर होते हैं, अतः विद्रोह करने के पूर्व विद्रोह से होने वाली लाभ हानि पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लिया जाना चाहिए। यदि विद्रोह का परिणाम तत्कालीन स्थिति से संतोषजनक परिस्थित होता हो तो भी विद्रोह किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन इस प्रकार का अधिकार का प्रयोग सभी प्रकार की बातों को सोचने विचारने के बाद विभिन्न विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। अधिकार विषयक सिद्धांत, व्यक्ति के यह अधिकार कैसे अस्तित्व में आए और वर्तमान समय में इन अधिकारों का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस विषय में समय समय पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जिन्हें अधिकार विषयक सिद्धांत कहा जाता है, जिनमें निम्न प्रमुख है। एक, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स। दूसरा, अधिकारों का वैज्ञानिक सिद्धांत लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। तीसरा, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। चौथा, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। पांचवा, अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स। पहला, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स। अधिकारों के संबंध में यह सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है और यह इसका प्रचलन यूनानियों के समय से है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसा कि आशीर्वादम ने कहा है, अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। इसकी विस्तृत व्याख्या करने का औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो सर्वसिद्ध स्वयं सिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात निरपेक्ष एवं स्वयं सिद्ध हैं। वे व्यक्तियों की प्रकृति की देन है और समाज द्वारा तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वाल्टेयर, टॉमस पेन, हॉवर्ड स्पेंसर, ब्लैकस्टोन आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का पोषण किया है। सामाजिक स्वतंत्रता सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। उनका अनुमान है कि प्रारंभ से ही व्यक्तियों को कुछ प्राकृतिक अधिकार थे और संविधान करते समय वह इन अधिकारों में से कुछ को अपने से उच्च सत्ता को इसलिए सौंप देता है कि उसके शेष अधिकारों की रक्षा हो सके। स्पेंसर का विचार है कि समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। लॉक, सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सिद्धांत का प्रभाव, इस सिद्धांत के प्रभाव और अमेरिका की क्रांति के प्रेरक सिद्धांत के रूप में कार्य किया है और इसके आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा की गई है। इस सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका को व्यक्ति का प्राकृतिक आधार कहा जाता है। आलोचना, अधिकारों के इस प्राकृतिक सिद्धांत के उस समय व्यक्ति के जीवन का मूल्य और महत्व स्थापित किया जबकि मानव का महत्व पशुओं से अधिक नहीं समझा जाता था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत का अधिक महत्व नहीं है और निम्नलिखित आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है। ए, प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक है। प्राकृतिक सिद्धांत में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया वह पूर्णतः अनिश्चित और अनेकार्थ है। प्रोफेसर रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि का वह भाग जहां मनुष्य नहीं है, आदर्श या पूर्ण लक्ष्य, संपूर्ण, साधारण या औसत। उपयुक्त सिद्धांत में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इस सिद्धांत में किसी भी प्रतिपादन ने प्राकृतिक शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। प्राकृतिक शब्द का अर्थ अनिश्चित होने के कारण यह सिद्धांत में निश्चित अनिश्चित और भ्रमपूर्ण हो जाता है। बी, प्राकृतिक प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों को सूची पर एकमत नहीं। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे अर्थात अथवा वर्तमान समय में इन धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में विद्वान एकमत नहीं है और इस एकमतता के अभाव में प्राकृतिक अधिकारों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। इस सिद्धांत के कुछ समर्थक व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ अन्य पूर्ण आर्थिक समानता को प्राकृतिक समझते हैं। कुछ विद्वान स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन करते हैं तो कुछ इसका विरोध। लास्ट किसी बातों को लक्ष्य करते हुए लिखा है, अधिकारों की कोई अस्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती है। तीसरा, अधिकारों का निरपेक्षता स्वीकार नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति की प्रकृति की देन होने के कारण निरपेक्ष हैं और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का प्रयोग प्रतिबंधों की विधिमानता में किया जा सकता है। प्रतिबंध के अभाव में स्वतंत्रता और श्रृंखलता में परिणत हो जाती है और समानता एक कल्पना मात्र बनकर रह जाती है। इस प्रकार के निरपेक्ष अधिकार आवश्यक रूप से संपूर्ण समाज के हित के विरुद्ध होंगे। चौथा, प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध। प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास भी पाया जाता है। अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार करने पर स्वतंत्रता और समानता का परस्पर विरोधी हो जाना और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। पांचवा, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था है जिसकी शक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकार से वंचित कर दिया गया है, किंतु वास्तविकता इसके नितंत विपरीत है। राज्य एक शाश्वत संस्था है जिसने अपने कानूनों द्वारा मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं वरन रक्षा की है। वास्तव में राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। छठा, सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकारों की कल्पना संभव नहीं। इस सिद्धांत में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। समाज से अलग रहकर हमारे पास शक्तियाँ हो सकती हैं, अधिकार नहीं, किंतु बिना सामाजिक मान्यता का अधिकार का अस्तित्व नहीं है। जैसा कि गिलक्राइस्ट ने लिखा है, अधिकारों की उत्पत्ति इसी तथ्य से हुई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वस्तुतः अधिकार तो व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। महत्व, इस प्रकार अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का जिस रूप में प्रतिपादन किया गया है उस रूप में वह सर्वथा अमान्य है। फिर भी इस रूप में प्राकृतिक सिद्धांत को स्वीकार किया जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य तो उस अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिनसे मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अमेरिका, भारत आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वह अधिकारों की इसी धारणा पर आधारित है। प्राकृतिक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों की धारणा में केवल अंतर यही है कि मौलिक अधिकारों की धारणा में स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि राज्य मानव अधिकारों का हनन नहीं बरन रक्षक है। अतः लॉर्ड के शब्दों में यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था द्वारा प्रदान की गई हों अथवा नहीं, परंतु जो व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यावश्यक है। गिलक्राइस्ट, प्राकृतिक अधिकारों को जिस उचित अर्थ में लिया जा सकता है वह केवल यही है कि मनुष्य को नीति शास्त्र के अनुसार सच्चा मनुष्य बनने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह उससे अवश्य प्राप्त होने चाहिए। अब अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। यह सिद्धांत प्राकृतिक विचार सिद्धांत के नितांत विपरीत है और इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता हो। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर करता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता है, नए अधिकारों को जन्म भी दे सकता है। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार राज्य द्वारा ही दिए गए हैं, और राज्य ही इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किन परिस्थितियों और किन समूहों में किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों के संबंध में तीन प्रकार के कार्य करता है। पहला, अधिकारों को परिभाषित करता है। दूसरा, उनकी सीमाएं निर्धारित करता है। और तीसरा, उनके उपभोग के आश्वासन की व्यवस्था करता है। वैधानिक सिद्धांत अधिकारों की निरपेक्षता को भी स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। वैधानिक सिद्धांत का समर्थन बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार अधिकारों का मापदंड नैतिक आधार न होकर वास्तविकता होने के कारण इन सिद्धांतों को वास्तविक कहा जा सकता है। आलोचना: अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की भी निम्न आलोचना हो सकती है। पहला, राज्य के आदेश कानूनों का निर्माण नहीं करते। राज्य अथवा शासन के आदेश से ही कानूनों का निर्माण नहीं हो जाता, परंतु राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्रदान करता है और रक्षा करता है। उदाहरण के लिए, राज्य का कोई भी कानून चोरी, घूसखोरी और कालाबाजारी को व्यक्ति का अधिकार नहीं बना सकता है। इस संबंध में नॉर्मन वाइल्ड ने उचित ही कहा है, कानून हमारे अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है, परंतु उन्हें जन्म नहीं दे सकता। अधिकारों को कानून का स्वरूप दिया जाए या न दिया जाए, उनका अपना अलग अस्तित्व है। कोई भी अधिकार केवल इसलिए अधिकार नहीं होता कि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, वरन कानूनी मान्यता इसलिए प्रदान की जाती है कि नैतिक दृष्टि से व्यक्ति का यह अधिकार है। लॉस्की ने कहा है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत केवल यह बता सकता है कि वास्तव में राज्य का स्वरूप कैसा है, लेकिन उसके यह पता नहीं चलता वे राज्य के किन अधिकारों को मान्यता दी है, वे वास्तव में मान्यता योग्य हैं भी या नहीं। दूसरा, राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा। यदि हम यह मान लें कि राज्य के अधिकारों का एकमात्र जन्मदाता है, तो परिणामस्वरूप राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा और शासक अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का अंत कर देंगे। आशीर्वादम ने इस बातों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह कहना कि एकमात्र राज्य ही अधिकारों की सृष्टि करता है और राज्य को निरंकुश बना देता है। राज्य को हम ऊंचा स्थान देने को तैयार हैं, लेकिन उसे उतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जा सकता। यदि सभी अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाने लगे, तो राज्य एक विशालकाय दत्त के रूप में प्रकट होने लगेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य के हाथ कठपुतली मात्र बन जाएगा। वह हर बार की सुविधा प्रकार करने के लिए राज्य का मुंह ताकेगा और अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाएगी। बस तो राज्य की शक्ति और कार्यों के भी कुछ निश्चित सीमा है, जैसे राज्य इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज और नैतिकता की मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए कार्य करता है और उन्हीं मर्यादाओं के रहते हुए अधिकारों से संबंधित कानूनों का निर्माण करता है। राज्य न तो निरंकुश होता है और न ही होना चाहिए। लॉस्की के शब्दों में, अधिकारों की प्रतिष्ठा लिखित विधान की अपेक्षा अभ्यास और परंपरा पर अधिक निर्भर करती है। तीसरा, कानून अधिकारों का उचित आधार नहीं। कानून अधिकारों का उचित आधार ही नहीं हो सकते, क्योंकि कानून में नित्य प्रति संशोधन होते रहते हैं। अधिकारों को उनका यथोचित महत्व और सम्मान प्राप्त करने की दृष्टि से उचित की भावना को भी अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लॉ ने ठीक ही कहा है कि किसी भी प्रकार की नैतिक व्यवस्था अधिकारों की आवश्यकता की पूर्व कल्पना है। इसके अभाव में प्रभाव, प्रयत्न, दावे या शक्तियां हो सकती हैं, परंतु इनको अधिकार नहीं कहा जा सकता। अधिकार का आधार तो औचित्य की भावना ही होती है। चौथा, वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी स्वीकार नहीं। उपयुक्त आलोचनाओं से बचने के लिए वैधानिक सिद्धांत के कुछ प्रतिपादक यह कहते हैं कि राज्य केवल वैधानिक कानूनों का निर्माण करता है, परंतु इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यवहार में देखा जाता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा है, विधि का किसी भी समय जो स्वरूप है और जो होना चाहिए, उन दोनों के बीच सदैव अंतर होता है। ऐसी स्थिति में वैधानिक सिद्धांत यह तो बता सकता है कि एक विशिष्ट परिस्थिति में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन यह नहीं बता सकता कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वैधानिक अधिकार सिद्धांत का महत्व। यद्यपि सिद्धांत में इस प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सिद्धांत में सत्य का अंश है। समाज की ओर से जिन स्वतंत्रताओं और सुविधाओं को मान्यता प्रदान की गई है या व्यक्ति को नैतिक विकास के लिए जो स्वत्व या दावे अनिवार्य हैं, उन्हें उस समय तक अधिकार नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसे राज्य के द्वारा मान्यता न प्रदान कर दी जाए। बस तो अधिकारों के वैधानिक और नैतिक दो पक्ष होते हैं, और अधिकारों के वैधानिक पक्ष पर बल देकर इसके द्वारा आंतरिक सत्य का प्रतिपादन किया गया है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन करते होते हैं, वही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही वे प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है, वे अधिकार बन जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक प्रोफेसर रिची ने लिखा है, जिन अधिकारों के संबंध में लोग सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने ही चाहिए, वही अधिकार होते हैं। जिनके वे अभ्यस्त होते हैं या जिनके संबंध में सही या गलत उनकी यह धारणा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे। और प्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए बर्क लिखते हैं, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर अधिकार ही थे। आलोचना: वर्तमान समय में इस विचारों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता के अधिकार ऐतिहासिक रीति रिवाजों के परिणाम हैं। निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। पहला, सभी अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं। हमारे कुछ अधिकार रीति रिवाज पर आधारित हो सकते हैं, किंतु सभी अधिकारों को रीति रिवाजों का परिणाम नहीं कहा जा सकता है। सती प्रथा या बहुपत्नित्व का निषेध, शारदा कानून और हरिजनों का मंदिर प्रवेश भारत के रीति रिवाजों के विपरीत है, फिर भी समझदार लोकतंत्र मत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन विधेयकों का समर्थन किया है। दूसरा, सभी रीति रिवाज समाज के हित में नहीं होते। अधिकार आवश्यक रूप से मानव कल्याण और सामाजिक हित में होते हैं, किंतु मानव जाति के इतिहास में विभिन्न सीमाओं पर प्रचलित सभी रीति रिवाज सामाजिक हित में नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ, भूतकाल में दास प्रथा, बाल हत्या, सती प्रथा, बहुपत्नित्व एवं बाल प्रथा की बाल विवाह की प्रथाएं विद्यमान हैं, किंतु ये प्रथाएं सामाजिक हित के विरुद्ध होने के कारण अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर हॉकिंस ठीक ही कहते हैं, यह कहना कि रीति रिवाज हमेशा ठीक ही होते हैं उतना ही मूर्खतापूर्ण है कि जितना कि यह कहना विधि किसी भी चीज़ को उचित बना सकती है। तीसरा, सुधार की संभावना का अंत। यदि हम इस सिद्धांत के आधार पर प्रथाओं के विकसित रूप को ही अधिकार मान लिया जाए तो सुधार की संभावना का अंत हो जाता है। प्रोफेसर हॉकिंस के शब्दों में, ऐतिहासिक सिद्धांत या तो कतई प्रदर्शक नहीं करता, यदि करता है तो गलत करता है, या असहाय सिद्धांत है यदि व्याख्या के विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों से उसे आलोकित न किया जाए। इतिहास की निस्संदेह अवहेलना नहीं की जा सकती, किंतु केवल इतिहास पर भी निर्भर भी नहीं रहा जा सकता है। यदि भूतकाल में ना, एक घंटा तो नहीं लेकिन 15-20 मिनट, अभी 15 मिनट लगभग लगेगा। किंतु केवल इतिहास पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यदि भूतकाल में शिक्षा या विदेश यात्रा का रिवाज नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्पुतनिक युग में भी कूपमंडू ही बने रहे। महत्व इन आलोचना का होते हुए भी इन सिद्धांत में सत्य नहीं था कि व्यक्ति को अनेक अधिकार रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन होते हैं। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज और अधिकार सभी को सामाजिक कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इन सब का उद्देश्य सामाजिक कल्याण ही होना चाहिए। बेंथम और मिल जैसे उपयोगितावादियों और रॉस्की पाउंड एवं प्रोफेसर चैफर आदि विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है, और लॉस्की ने भी उपयोगितावादी को ही अधिकार की कसौटी माना है। बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सूद का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रोफेसर चेफर का कहना है कि अधिकारों का निश्चय हितों के संतुलन से होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर लॉस्की कहते हैं, लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ व अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आलोचना, यद्यपि अधिकारों के विवेचना के संबंध में यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा औचित्यपूर्ण एवं संतोषजनक प्रतीत होता है, किंतु यह भी दोषमुक्त नहीं है और अनेक आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। पहला, लोक कल्याण की अस्पष्टता। लोकहित अधिकारों की अच्छी कसौटी कही जा सकती है, लेकिन लोकहित या लोक कल्याण की व्याख्या नितांत कठिन है। लोक कल्याण का अर्थ समानता, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बहुमत का स्वार्थ, लोक सम्मति का शासन की दृष्टि से जो सार्वजनिक हित हो आदि बातों से लिया जाता है। यदि इनमें से किसी एक को लोकहित या लोक कल्याण मान भी ले तो भी अधिक कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये शब्द नितांत अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। अधिक से अधिक सुख का कोई माप नहीं हो सकता और संपूर्ण समाज की कोई चेतना हो ही नहीं सकती है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वार्थ कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष। इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण में भी संघर्ष हो सकता है, और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, यह एक समस्या हो जाती है। समाज कल्याण सिद्धांत का यह विचार है कि समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा है। प्रश्न यह है कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति का समाज के बड़े अंश की प्रसन्नता के लिए बलिदान किया जा सकता है। इस सिद्धांत को अपनाने से अल्पसंख्यकों के हितों को हानि पहुंचने की भी आशंका रहती है। व्यक्ति को जनमत की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता, केवल लोक आवश्यकता ही किसी बात को नैतिक अथवा अनैतिक नहीं बना सकते। नॉर्मन वाइल्ड का भी कहना है, यदि समाज की कृपा से अधिकारों की कृति होती है तो व्यक्ति के पास उपचार का कोई साधन नहीं होगा और वह निराशाजनक रूप से समाज की निरंकुश इच्छा के अधीन रहेगा। समाज कल्याण सिद्धांत का महत्व उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद एक दृष्टि से यह सिद्धांत सत्य है कि अधिकार का अस्तित्व समाज के हित के लिए होता है और उसका उपयोग समाज के हित में ही किया जाना चाहिए। आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है, और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए वे परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्ति के विकास की प्राप्ति माना गया है, अतः इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है। क्योंकि इसके सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर आश्रित कर दिया गया है, इसलिए इसे व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रॉस, हेनरीची, ग्रीन, लॉस्की आदि विद्वानों द्वारा अधिकारों की जो परिभाषा की गई है जो आदर्शवादी सिद्धांत पर ही आधारित हैं। क्रॉस के अनुसार अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां हैं। हेनरीची कहते हैं मनुष्य के व्यक्ति के विकास के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक हैं उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी है वही अधिकार है। ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति है जो कि किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीवन के रूप में उसके व्यवसाय और कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह सिद्धांत प्राकृतिक धारणा की इस मान्यता के सर्वथा प्रतिकूल है कि व्यक्ति कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ जन्म लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं वरन प्राकृतिक शक्तियां लेकर जन्म लेता है। प्राकृतिक शक्तियों के इस विकास का ही दूसरा नाम व्यक्तित्व का विकास है और व्यक्तित्व के विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने का कार्य समाज एवं राज्य द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास हेतु व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है, अतः व्यक्ति का अधिकार है कि वह जीवित रहे। व्यक्तित्व के विकास हेतु शारीरिक उन्नति आवश्यक होने के कारण उत्तम व स्वास्थ्यकर भोजन की प्राप्ति उसका अधिकार हो जाता है और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के कारण ही विवाह द्वारा परिवार का निर्माण, योग्यता अनुसार कार्य व पारिश्रमिक की प्राप्ति और शिक्षा व्यक्तित्व के अधिकार हो जाते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत व्यक्ति के अन्य अधिकार इस मुख्य सिद्धांत के सहायक मात्र हैं। आदर्शवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत अनेक कारणों से अधिकारों के विवेचना के संबंध में सर्वाधिक संतोषप्रद सिद्धांत कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम तो इस तथ्य की स्वीकृति प्रदान की गई है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है और अन्य किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत व्यक्तित्व को आदर्श रूप में स्वीकार करता है और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान स्तर प्राप्त होता है। यह सिद्धांत इस तर्कपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हों। यह सिद्धांत न तो व्यक्ति के गलत अधिकारों का समर्थन करता है और न ही उसे अचित अधिकारों से वंचित करता है। इस सिद्धांत का एक अन्य गुण यह भी है कि यह सिद्धांत न तो प्राकृतिक सिद्धांत की तरह अधिकारों को निरपेक्षता या असीमितता का प्रतिपादन करता है और न ही वैदेहिक सिद्धांत या समाज कल्याण सिद्धांत की तरह अधिकारों की सापेक्षता का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि समाज या राज्य अधिकारों पर मनचाहे प्रतिबंध लगा सकता है। यह सिद्धांत मध्यम मार्ग ग्रहण करते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि एक व्यक्ति के अधिकारों पर केवल वही प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो अन्य व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक हो। आलोचना और प्रत्युत्तर। इन गुणों के होते हुए भी आदर्शवादी सिद्धांत की साधारण आलोचना की जाती है कि यह सिद्धांत अव्यवहारिक है। आलोचक यह कहते हैं कि मात्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक आंतरिक एवं व्यक्तिगत चीज है और समाज एवं राज्य न तो ठीक प्रकार से यह जान सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है और न ही बाहरी सुविधाओं के द्वारा व्यक्तित्व का विकास संभव बनाया जा सकता है। परंतु यह आलोचना इन त्रुटिपूर्ण विचारों पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित रहते हुए विकसित हो सकता है। वस्तु व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों का परिणाम होता है और एक बड़ी सीमा तक इसका विकास बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और रोजगार की उचित व्यवस्था करके व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। ग्रीन के शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य एवं समाज एवं राजनैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करके व्यक्ति के जीवन को नैतिक बना सकते हैं। अतः इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि व्यक्तित्व के विकास रूपी आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह व्यक्ति का अधिकार है उचित ही प्रतीत होता है। व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए इस संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत करता है जो अन्य सिद्धांत नहीं बता पाते और इसलिए यह सिद्धांत सर्वोत्तम है। अधिकार और कर्तव्य का संबंध, रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। समान दृष्टि से देखा जाए तो अधिकार और कर्तव्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। साधारणतः अधिकार का आशय यह लिया जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने से अभिप्राय लाभ उठाने से है। कर्तव्य का अभिप्राय है दूसरे के लिए कोई कार्य करना। यह एक प्रकार से व्यक्तिगत हानि कही जा सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अधिकार लाभ और कर्तव्य हानि प्रतीत होते हैं और इन दोनों में एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है। किंतु इस प्रकार का दृष्टिकोण मिथ्या एवं भ्रमात्मक है। बस तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, जब तक व्यक्तियों को आजीविका प्रदान प्राप्त करने, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा, उस समय तक वे कर अदा करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं जुटा पाएंगे और जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे उस समय तक राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं होगा। इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्रे ने अधिकार को कर्तव्य का पूरक बताया है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने ठीक ही कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो अधिकार और इसी को दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है तो वे कर्तव्य हो जाते हैं। दोनों ही सामाजिक और दोनों ही वास्तव में
समाज के सभी सदस्यों के लिए सही जीवन यापन की परिस्थितियां हैं। यह सोचना व्यर्थ है कि अधिकार कर्तव्य के पूर्व हैं या कर्तव्य अधिकार के, वे एक दूसरे के पार्श्व भाग हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकारों पर ही जोर देता है लेकिन दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो किसी के लिए कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सामाजिक मांगे हैं और इन दोनों का संबंध निम्न रूपों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकार एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं बल्कि आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रश्न है। सहयोग के द्वारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं और सहयोग के द्वारा ही उनका उपभोग किया जा सकता है। वस्तुतः एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्तियों का कर्तव्य होता है और व्यक्ति के अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि समाज के दूसरे व्यक्ति उसके प्रति अपने कर्तव्यों का किस सीमा तक पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने विचार और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का उसी समय उपयोग कर सकता हूँ जब समाज के दूसरे लोग मेरे विचारों के प्रति सहिष्णु हो। बाइबल के शब्दों में कहा जा सकता है कि अधिकारों का महत्व केवल मात्र कर्तव्यों से के संसार में ही है। दूसरा, व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरों के समान अधिकार को स्वीकार करे। व्यक्ति का लक्षण यह है कि वे समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान अधिकारों का लक्षण यह है कि वह समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार करे। यदि मुझे संपत्ति का अधिकार है तो इस अधिकार के साथ ही मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न न करूं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने ठीक ही कहा है कि यदि व्यक्ति अपने केवल अधिकार का ही ध्यान रखे तो दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र किसी के भी अधिकार नहीं रहेंगे। तीसरा, नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य। अधिकार व्यक्ति का वह विवेकपूर्ण दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अतः व्यक्ति के अधिकारों का महत्व उसी समय तक है जब तक कि राज्य इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था करे। यदि व्यक्ति के किसी अधिकार में कोई दूसरा व्यक्ति बाधक सिद्ध होता है तो राज्य का कर्तव्य है कि उसे वह दंड दे। वस्तुतः व्यक्ति के अधिकार राज्य का कर्तव्य पालन की क्षमता पर निर्भर करते हैं। चौथा, व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए कर्तव्य है। अधिकार प्रदान प्राप्त करने का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और सामूहिक रूप से संपूर्ण समाज की उन्नति है। अतः व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित में करे। मुझे प्राप्त संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य यह है कि मैं संपत्ति प्राप्त करने का प्रयत्न इस प्रकार करूं कि संपूर्ण समाज या दूसरे व्यक्तियों की उन्नति में भी कोई बाधा ना पहुंचे, अर्थात मुझे संपत्ति के आधार पर दूसरे व्यक्तियों का शोषण नहीं करना चाहिए। पांचवा, व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया जाता है और राज्य इस बात की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग कर सके। इस प्रकार राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था के कार्य करता है। उन कार्यों के बदले में व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य का समर्थन और सहयोग करे। राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठा के और संकट की स्थिति में राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं। अधिकार कर्तव्य का तथा कर्तव्य अधिकार का प्रतिबिंब मात्र होता है। एक के अंत के से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विश्व में बढ़ती हुई ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा और असंतोष का एकमात्र कारण यह है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का तो उपयोग करना जानते हैं लेकिन कर्तव्य पालन के प्रति उदासीन है। सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करे। महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जा सकता है कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक, अधिकार की परिभाषा कीजिए और इस कथन की व्याख्या कीजिए कि प्रत्येक राज्य की पहचान उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से होती है। दूसरा, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, क्या इस सिद्धांत में सत्य का कुछ अंश है, स्पष्ट करें। तीसरा, अधिकारों के संबंध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनात्मक दृष्टि से विवेचना कीजिए, इनमें कौन सा सिद्धांत संतोषप्रद है बतावें। चौथा, अधिकार की परिभाषा कीजिए और अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पांचवा, अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। छठा, अधिकार के संबंध में दिए गए सिद्धांतों का वर्णन करें। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा बीए प्रथम वर्ष पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर तुलना फर्स्ट पेपर राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत की रिकॉर्डिंग डॉक्टर पुखराज जैन द्वारा लिखित पुस्तक
के द्वारा की गई है 11 दिसंबर 2007 को। बाय।